प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत और रूस के बीच 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की सहअध्यक्षता करेंगे। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा सहयोग, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित द्विपक्षीय मुद्दों की समीक्षा करेंगे। वे आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी दृष्टिकोण साझा करेंगे। दोनों नेता ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन, G20, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र जैसे समूहों में द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति का भी आकलन करेंगे। श्री मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मॉस्को पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस में भारतीय समुदाय से बातचीत भी करेंगे। वे क्रेमलिन में सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और मॉस्को में प्रदर्शनी स्थल पर रोसाटॉम पवेलियन का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज तिरुवनंतपुरम में राज्य भाजपा की विस्तारित कार्यकारिणी बैठक में भाग लेने के लिए केरल जाएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद श्री नड्डा की ये पहली केरल यात्रा है। उन्होंने कहा कि हाल के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने न केवल केरल में अपनी सीटों का खाता खोला बल्कि वोट प्रतिशत में भी इजाफा किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए मंत्रिमंडल में मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। गृह, कार्मिक और मंत्रिमंडल सचिवालय जैसे प्रमुख विभाग उन्होंने अपने पास ही रखे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के अलावा जल संसाधन विभाग भी आवंटित किया गया है। वहीं बैद्यनाथ राम को स्कूली शिक्षा और उत्पाद तथा मद्य निषेध विभाग सौंपा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से न्यायालय में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को मामले में अब तक की जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। न्यायालय ने एनटीए, केंद्र सरकार और सीबीआई को बुधवार शाम 5 बजे तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 72 तक पहुंच गई है। राज्य के 27 जिलों में 22 लाख से अधिक लोग अभी भी बाढ़ से जूझ रहे हैं। वहीं 91 राजस्व मंडलों के 3,100 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और 49,000 हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने कल 218 लोगों को बचाया। ब्रह्मपुत्र, बराक और उसकी सहायक सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ के कारण 127 सड़कों और 2 पुलों के अलावा अन्य बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने 245 राहत शिविर और 298 राहत वितरण केंद्र खोले हैं। 53,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में हैं। मौसम विभाग ने मुंबई और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन के लिए मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। मुंबई सहित राज्य के कई जिलों में कल तेज बारिश हुई। मुंबई महानगर क्षेत्र में कई इलाकों में पानी भर गया। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा, कोल्हापुर और बुलढाणा जिलों के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मुंबई हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हालात का जायजा लेने के बाद कहा कि राज्य की सभी एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। मौसम विभाग ने मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए आज दोपहर 1 बजे तक अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और वैज्ञानिक केएस होशलीकर ने बताया कि पुणे, सतारा, पालघर, सिंधुदुर्ग और ठाणे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने वार्सा में द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता आज से वाशिंगटन में होने वाले उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो शिखर सम्मेलन की शुरुआत से 1 दिन पहले हुआ। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में श्रृंखला के तीसरे और अंतिम 2020 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।